भगवान मुनि से बता के चरित्र की व्याख्यान माला आप सब श्रवण कर रहे हैं। मंगलाचरण में प्रस्तुत है। मुनि सुव्रत सुव्रत के दाता भव हरता मूर्ति दाता हो, मैं नमू तुम्हें मेरे स्वामी मुझको भी सिद्धि प्रदाता हो। वह राज ग्रही नगिरी धन्य त्रैलोक्य गुरु जहाँ थे जन में, ऐ धन्य सुमित्र पिता माता सोमा भी धन्य हुई जग में। हे देव तुम्हारी भक्ति का हरे यही बस मिल जावे, प्रतिदिन प्रतिपल अंतिम क्षण तक तव नाम मंत्र जिहुआ गावे। नहीं पीड़ा हो नहीं हो कसाय, बस कंठ अकुंठित बना रहे, ये नाथ तुम्हारे चरणों की भक्ति में ही मन रमा रहे। जब लोग सुब्रत नाथ भगवान की जय, भगवान मुनि सुब्रत नाथ के तृतीय भाव पूर्व का कथन चल रहा है। अर्थात जैसे भगवान सब देव के दस भाव का कथन मिलता है, भगवान शांतिनाथ के भी दस ग्यारह भावों का कथन मिलता है, ऐसे बीसवें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत नाथ का केवल तीन भावों का कथानक प्राप्त होता है, जिसे आचार्य श्री गुणभद्र सूरी ने उत्तर पुराण के अंदर निबद्ध किया है और वह चंपापुर के राजा हरिवर्मा से प्रारंभ होता है कथानक, तो हमने आपको बता रखा है। वे गुरुदेव अनंत वीर्य के पास चंपापुर के उद्यान में दर्शन करने गए और उनके तत्व प्रवचन से पुरुषार्थों के प्रवचन के द्वारा उन्होंने जब धर्म काम और मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में श्रवण किया तो उन्हें वही वैराग्य हो जाता। देखो गुरुओं की महिमा बड़ी न्यारी है। कहते हैं ते गुरु मेरे उर्वसो जी भव जलद जहाज, आप तरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। उन गुरुदेव के लिए कहा कि आप मेरे मन में बसिए, जो भवरूपी समुद्र को तिरने के लिए जहाज के समान है, वे स्वयं तिरते हैं और अन्य भव्यात्माओं को तिरा देते हैं। ऐसे गुरु का आश्रय राजा ने भी लिया, झुक करके उनके चरणों में नमन किया, गुरु से दिव्य देशना का पान किया और एकदम उन्हें नस्कर लक्ष्मी राज वैभव से वैराग्य हो जाता है। वे गुरुदेव के समीप जाकर के अपना सब कुछ परित्याग करने लगते हैं, अपने पुत्र को राज तिलक करके अपनी पुत्रियों को और रानियों को अनेक और भी प्रजा को राजा को सबको यथा योग्य भेंट में दे करके और वे वन में जाकर के गुरुदेव के समीप दीक्षा धारण करे महामुनि बन जाते हैं। अर्थात राजा हरिवर्मा अब मुनि हरिवर्मा बन जाते हैं। एकमात्र लक्ष्य था उनका आत्म कल्याण, पर की ओर देखने का कोई भाव नहीं था, क्योंकि पूरा राष्ट्र उनके चरणों में था और उसको तृण के समान जीर्ण तृण के समान परित्याग करके मुनिराज के समक्ष बस केवल आत्म कल्याण और ज्ञान की प्राप्ति में ही लगे थे। देखो गुरु चरणों का प्रभाव क्या होता है। उन्हें अध्ययन करते करते 11 अंग तक के श्रुत का ज्ञान हो जाता है। आप द्वादशांग की बात सुनते हो, 12 अंग का जो दिव्य ध्वनि से गणधर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है वे अंतर्मुख में 11 अंग और 14 पूर्व रूप सूत्र को निबद्ध कर देते हैं। ये केवल गणधरों की बस का ही होता है क्योंकि उन्हें दीक्षा लेते ही मना पर ये ज्ञान हो जाता है। ऐसे भी 11 अंग 14 पूर्व रूप सूत्र वर्तमान में नहीं है, उनके अंश हैं। आपको पूज्य गणी ज्ञान मती माता प्रातः काल के प्रवचन में सठ खंडागम ग्रंथ की धवला टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका इनके आधार से बता रही है कि किस प्रकार से 11 अंग और 14 पूर्वों की महिमा है, एक ही अंग के अंदर कितने कितने अक्षर होते हैं और किस प्रकार से वह ज्ञान केवल गणधरों के बस का ही होता है। उस ज्ञान को ना प्राप्त कर सकते हैं ना आज के विद्वान आज के कोई संत उसे शास्त्र के रूप में निबद्ध भी नहीं कर सकते। आपको 11 अंग के नाम जानना है, सरस्वती माता की पूजा करते हो ना, कहो आचाराम दूजो सूत्र कृतम अविलासम पद 36 सहस गुरु भाषम। अब क्या है, इनको पढ़ तो लेते हैं, बड़े अच्छे श्रुति स्कंद विधान के अंदर पूज्य माता ने बहुत संक्षेप संक्षेप के अंदर श्रुति स्कंद विधान है। आने वाली शुद्ध पंचमी को जो 19 जून को आएगी उस दिन हर शुद्ध पंचमी को ये विधान किया जाता है और वैसे भी ज्ञान प्राप्ति के लिए इस विधान को करते हैं। तो महामुनि हरिवर्मा को 11 अंग का ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेना ये उनकी तपस्या का प्रतिफल था क्योंकि रत्नत्रय में त्याग में संयम में साधना में ब्रह्मचर्य में ऐसी शक्ति होती है जो ज्ञान गृहस्थ अवस्था में बड़ा असंभव सा लगता है और वह दीक्षा लेने के बाद एकाग्रता पूर्वक अध्ययन करने से और तपस्या के रत्नत्रय के माध्यम से वह ज्ञान जब प्रस्तुत होता है तो देखो हरिवर्मा मुनिराज को वैसे अपने गुरुदेव के निकट में 11 अंग का ज्ञान हो जाता है। है क्या 11 अंग में, वे आचारांग जो है पहला अंग उसको उसमें कहते हैं कि मुनियों का श्रावकों का आचार यानी उनकी चर्या का वर्णन होता है, जैसे मूलाचार है आचार सार अंगार धर्मांगर रत्नकरण श्रावकाचार 36 श्रावकाचार है जिसके अंदर श्रावकों के आचार का वर्णन होता है और मूलाचार मुनियों का संहिता ग्रंथ है। इन सब के अंदर आचारांग नाम के प्रथम अंग का सार है, समझ लेना। अंग का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस अंग के बारे में कहा गया है 18,000 समान श्लोकों के द्वारा आचारांग का वर्णन किया गया है। तो ऐसे आचारांग का ज्ञान हो गया जिसको आज हम अंश के रूप में आचार्य कुंद कुंद की वाणी में गौतम गंधर्व की वाणी में हम पढ़ते हैं। दूसरा है सूत्रता जो 36,000 पदों के द्वारा, ये पद भी एक एक बहुत बड़े बड़े इन पदों के द्वारा जिसके अंदर 36,000 पदों के द्वारा सूत्रता का वर्णन है तो स्व समय पर समय का जो वर्णन करती है माने जैन शास्त्र और तमाम मतों के खंडन मंडन के शास्त्रों का जिसके अंदर मतों का मत मतांतरों का वर्णन होता है वह सूत्र प्रताप है, उसका भी ज्ञान हो गया महामुनि हरिवर्मा को। और तीसरा है स्थानांग। स्थानांग में क्या है, जीव और पितर के भेद 1, 2, 3 आदि इनका वर्णन स्थानांग नाम का अंग करता 42,000 पदों के द्वारा। महान महान ज्ञान जिसके अंदर भरा हुआ है ऐसे सूत्र सुधा स्थानांग का भी ज्ञान महामुनि हरिवर्मा को हो गया। समवायांग नाम के चतुर्थ अंग का वर्णन जिसके अंदर द्रव्य की अपेक्षा कहा है कि क्षेत्र काल और भाव के समान उसमें समवाय का अच्छा वर्णन किया गया है। जब इन एक एक अंगों की अंश रूप ग्रंथों को पढ़ें आप जो आज कई उपलब्धि नहीं है, विशेष रूप से हमारे पास में पूर्व के अंश रूप में प्रथमान योग के ग्रंथ मौजूद हैं, समय सार आदि द्रव्यान योग मौजूद है, तो ऐसे समवायाम नाम की अंग का भी ज्ञान उन्हें हो गया। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग का, जिसके अंदर अनेकांत का वर्णन है, सावाद का वर्णन है, जीव कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य है, यानी कि जीव की अपेक्षा आत्मा की अपेक्षा नित्य ही नित्य है, चाहे वो सिद्ध बन जाए चाहे संसारी रहे, जीव तो जीव है। और मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, इनमें भ्रमण करता है नाना योनियों में, इस अपेक्षा से अनित्य है। इन सब का वर्णन 7000 प्रश्नों को जब गौतम गंधर्व के पास में राजा श्रेणिक ने किया, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर मिले वह व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग के नाम से विख्यात हुए। ऐसे आगे नाम धर्म कथांग, उपासना ध्यानांग, अंतर्दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि वादांग, ऐसे 11 अंगों का ज्ञान हो गया। किनको? महामुनि हरिवर्मा को। कहते हैं जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो राजकाज के अंदर सूरवीर थे, दत्तचित्त थे, होशियार थे, तन्मय थे, जिन्होंने हमेशा प्रजा का ध्यान रखा, अपने कर्तव्य का ध्यान रखा, ऐसे महाराजा हरिवर्मा, क्योंकि उन्हें तो अब तीसरे भाव में तीर्थंकर बनना है, मुनि सूरत नाथ बनना है, उनके ज्ञान का क्या कहना, पहले से ही ऐसे लोगों को ज्ञान हो जाया करता है। देखो कैसे ज्ञानी ज्ञानी महाराज हुए, अकलंक देव हुए, विद्यानंद आचार्य हुए, जिन्होंने अष्टचैत्य ग्रंथ की रचना की, राजवार्तिक ग्रंथ की रचना की और न जाने कितने कितने ग्रंथों की रचना कर दी। ये सब आगामी काल में सिद्ध भगवान की श्रेणी में आने वाले हैं। आज हम देखते हैं ज्ञान की माता को कितना अच्छा ज्ञान है, अंग का ज्ञान तो आज किसी को होता नहीं, पूर्व की बात ही नहीं, लेकिन अंश का ज्ञान जो है, इन अंगों के पूर्वों के अंश रूप से जो शास्त्र है उनका ज्ञान प्राप्त करके आज में 500 से अधिक ग्रंथों के रूप में पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने ज्ञान प्रदान कर दिए। तो क्या है ये सब? अभीष्म ज्ञान है। आकुलताओं में, बेचैनी में, संक्लेश में अपने दिनों को, अपने पलों को नहीं निकाल करके उन्होंने सदा एक एक क्षण का सदुपयोग किया और अभीष्म ज्ञान द्वारा खुद ये ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त किया और भव्यात्माओं के लिए 500 ग्रंथ लिख करके दे दिए, जो युग युग तक याद किए जाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे लोग। तो भव्यात्माओं इस प्रकार से महाराजा हरिवर्मा ने मुनि बनकर के गुरु के सानिध्य में सिद्धांत ज्ञान को प्राप्त किया और 11 अंग के ज्ञानी बने और उन्हीं आचार्य देव के पास भी जो अनंत वीर नाम के महामुनिराज थे वे शुद्ध केवली थे, ऐसा वर्णन आया है। उन शुद्ध केवली के समीप में महामुनि हरिवर्मा ने तीर्थंकर कृति का बंद कर लिया, क्योंकि अब आगे आने वाले काल में देव की पर्याय से बस भी महान तीर्थंकर जैन शासन के 20वें तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ बनने वाले हैं। ऐसे महामुनिराज का यानी तीर्थंकर भगवान का चरित्र बहुत ही भावों से सुनते रहे, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की कथा सुनने मात्र से महान होने का बल होता है, कर्मों का नाश होता है, अज्ञान का विनाश होता है, ज्ञान का विकास होता है। ये पंक्ति हमेशा ध्यान रखिए मानकुंगाचार्य की, तत्संग कथा जगता दुरीतान हंति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा परेश जल जानी विकास हंजी। तो हे भगवान, आपकी कथा सुनने मात्र से भगवान को ऐसे ही पुण्य प्राप्त हो जाता है जैसे सूर्य को लाखों किलोमीटर ऊंचाई पर है लेकिन उसकी किरणें निकलती हैं तो धरती के सारे अंधकार को नष्ट करके और कमलों को भी विकसित कर देती हैं। उसी प्रकार के भव्य कमलों को आप विकसित कर देते हैं, ऐसी आपकी कथा है। उस कथा को श्रवण करते रहिए, अपनी पुण्य की वृद्धि करते रहिए, भगवान विश्वनाथ नाथ की जिन प्रतिमा बहुत ही सुंदर अयोध्या में पधार चुकी है, समझो माता के गर्भ में आ चुके हैं भगवान और उनकी वेदी खूब अच्छी तैयार हो रही है। दक्षिण भारत की स्टाइल के समान भावों से सहित वो वेदी बनते देखते हैं, सुंदर लगता है। और भगवान मुनि सुव्रत के गर्भ में आने से भी पहले रत्नों की वर्षा होने लगती है, जैसे धरती पर ऐसे हमेशा इस धरती पर उत्सव महोत्सव का वातावरण बना है। प्रातः काल से ही भक्तगण अभिषेक करते हैं और खूब शांति धारा करते हैं, ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करते हैं। आने वाले अग्नि ज्येष्ठ के अंदर सभी भगवंतों के सारे जन्म गर्भ जन्म आदि कल्याणकों को आप सभी मिलकर के मनाएंगे और ये ज्येष्ठ का मास हम सब लोगों के लिए खूब मंगलदायी होगा। उसी में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन होने वाला है। 17 जून से 21 जून तक आप सबको इस पंच कल्याण में भाग लेकर या उसको सीधे प्रसारण के रूप में पारस चैनल में देख करके अपने पुण्य की वृद्धि करना है। जय लो मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय।